तो हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंध 16वां अध्याय के 31 30 और 31 श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। मयि संब्रह्म योगेन निस्तीर्य ब्रह्म हेलनम प्रत्येषतम विकाशमे कालेन अल्पीय सन् पुनः। इसका अनुवाद और तत्पर्य श्री प्रभुपाद के द्वारा। श्री प्रभुपाद की भगवान ने जय तथा विजय नामक दोनों वैकुंठ वासियों को आश्वस्त किया। क्रोध में योगाभ्यास द्वारा तुम ब्राह्मणों की अवज्ञा करने के पाप से मुक्त हो जाओगे और अति अल्प अवधि में मेरे पास वापस आ जाओगे। तात्पर्य, भगवान ने जय और विजय नामक दोनों द्वारपालों को यह सलाह दी कि क्रोध में भक्ति योग के अभ्यास के बल पर वे ब्राह्मण शाप से मुक्त हो जाएंगे। श्री मध्व मुनि ने इस संदर्भ में टिप्पणी की है कि भक्ति योग का अभ्यास करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो सकता है, यहाँ तक कि ब्रह्म शाप अर्थात ब्राह्मण द्वारा दिया गया शाप जिसका अन्य किसी साधन से निवारण नहीं किया जा सकता, भक्ति योग द्वारा निवारित हो सकता है। मनुष्य भक्ति योग का अभ्यास कई रसों में कर सकता है। रस 12 है, 5 प्राथमिक तथा 7 गौण। 5 प्रमुख रसों से प्रत्यक्ष भक्ति योग की रचना होती है, किंतु 7 गौण रस अप्रत्यक्ष होकर भी भक्ति योग के ही अंतर्गत गिने जाते हैं यदि उनका प्रयोग भगवान की सेवा में किया जाए। दूसरे शब्दों में भक्ति योग में सभी सम्मिलित हैं। यदि कोई किसी तरह से पुरुषोत्तम भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है तो वह भक्ति योग में लग जाता है, जैसा कि श्रीमद् भागवत 10:29-15 में वर्णन हुआ है। कामम क्रोधम भयम, गोपियां काम संबंध में भक्ति योग द्वारा कृष्ण के प्रति आकृष्ट थी। इसी तरह कंस अपने मृत्यु के भय के कारण भक्ति योग के प्रति आसक्त था। इसी तरह भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि भगवान का शत्रु बनने तथा सदैव उनके विषय में सोचने पर अतिशीघ्र मनुष्य का उद्धार हो सकता है। कहा गया है, विष्णु भक्ता सुरितो देवा आसुरस तद विपर्यया। विष्णु के भक्त देवता कहलाते हैं जबकि अभक्त गण असुर कहलाते हैं, किंतु भक्ति योग इतना शक्तिशाली है कि सुर तथा असुर दोनों ही इससे लाभ उठा सकते हैं यदि वे भगवान का सदैव चिंतन करें। भक्ति योग का मूल स्थान है परमेश्वर के विषय में निरंतर चिंतन करना। भगवद्गीता 18:65 में भगवान कहते हैं, मन मना भव भगवत्ता सदैव मेरा चिंतन करो। चाहे कोई जिस तरह से चिंतन करे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का चिंतन करना ही भक्ति योग का मूल सिद्धांत है। भौतिक लोगों में पाप कर्मों की विभिन्न कोटियां हैं जिनमें से ब्राह्मण या वैष्णव का अनादर करना सबसे अधिक पापपूर्ण है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य इस गंभीर पाप से भी मात्र विष्णु का चिंतन करके, ठीक ट्रांसलेशन है, विष्णु का चिंतन मात्र करके होगा। मात्र विष्णु क्या होता है, मतलब इससे मात्र विष्णु का मतलब है विष्णु छोटी सी चीज है, जबकि सही ट्रांसलेशन होनी चाहिए विष्णु का चिंतन मात्र करके, कि भगवान विष्णु का सिर्फ ध्यान करके या बात करते है ना। सो कई जगह ट्रांसलेशन गड़बड़ की किया हुआ। मनुष्य इस गंभीर पाप से भी विष्णु का चिंतन मात्र करके, वह भी अनुकूल रीति से नहीं अपितु क्रोध में करके छुटकारा पा सकता है। इस तरह जो भक्तगण सदैव विष्णु का चिंतन करते हैं वे भी सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। फैन ऑफ कृष्ण भावना में सर्वोच्च प्रकार की सोच है। अच्छा, इस युग में भगवान विष्णु का चिंतन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन द्वारा किया जाता है। भगवान के कथनों से ऐसा लगता है यदि कोई कृष्ण का चिंतन शत्रु के रूप में भी करता है तो यह विशेष योग्यता विष्णु या कृष्ण का चिंतन उसके सारे पापों को धो डालता है। ओम ज्ञान तुमरंदस्य ज्ञानार्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्वदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीपादपद्मं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सर्वगणमातान्वितं तं सजीवं सार्वैतं सार्वभूतं परिसंसन्तं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सङ्कल्पितं श्रीविशाखान्विताश्च हे कृष्ण करुणासिन्धो देवबन्धो जगद्पते गोपेश गए वहाँ पर उनको रोक लिया जय विजय द्वार पर। जब रोक लिया तो उनको गुस्सा आ गया, गुस्सा कर उनको श्राप दे दिया तुम ईर्ष्या, तो तुम जो ईर्ष्यालु होते हैं वो वैकुंठ में नहीं रह सकते, नीचे चले जाओ। सुखैर जैसे वो श्राप दिया तो भगवान लक्ष्मी जी समेत वहाँ आए, तो भगवान ने उनको बोला अच्छा किया आपने श्राप दिया, आपने अच्छा किया श्राप। अगर मेरे भक्तों की अवहेलना मेरी बाजू भी करेगी उसको भी काट के पहन दूंगा। तो चार कुमारी सुन के खुश नहीं हुए, डर गए। उनको पता नहीं चल रहा था कि भगवान का मंतव्य क्या है। कोटि समुद्र कम भी भगवान जो है उनका जो हृदय है जो मन है वो कोटि करोड़ों समुद्र से भी गहरा है, अकार है। भगवान के मंतव्य को समझना इतना आसान है। तो चार कुमार काफी चिंतित हो गए, उनको लग गया कि उन्होंने सही नहीं किया और उन्होंने भगवान से प्रे किया कि हमसे गलती हो गई और भगवान से भगवान द्वारा दी गई किसी भी दंड को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। लेकिन भगवान ने बोला कि ये मैंने बेसिकली मेरा प्लान है। तो क्वेश्चन है कि भगवान का क्या प्लान है? नहीं तो भगवान का प्लान है कि वैकुंठ में, वैकुंठ लोक का मतलब है जहाँ कोई कुंठ नहीं है, सारे डिवोटीज बेसिकली भगवान के, और डिवोटीज भी ऐसे वैसे नहीं है, शुद्ध भक्त है। तो वहाँ पे भगवान वीर रस का आस्वादन नहीं कर सकते। तो वीर रस का आस्वादन करने के लिए भगवान भौतिक जगत में आते हैं और अपने ऐसे भक्तों को भेजते हैं जिनके साथ वो वीर रस का आस्वादन कर सके। जैसे हमें पता चलता है हिरण्याक्ष का जब वध किया भगवान ने बराबर तो इतना भयंकर युद्ध हुआ दोनों में आपस में, और कई बार तो ऐसा लग रहा था कि हिरण्याक्ष जो है वो हावी हो रहा है भगवान पर। तो उसका वध करने के बाद भगवान ने बोला बहुत अच्छी वेरी नाइस। सो भगवान को वीर रस का आस्वादन करना था। अब हमारे से तो लड़ेंगे नहीं, हमें तो देखेंगे काम खत्म, हम कहाँ लड़ सकते हैं। तो इसलिए भगवान सक्षम लोगों को भेजते हैं जिनके साथ भगवान आस्वादन कर सकते। और विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कह रहे हैं कि भगवान के जो धाम की लीलाएं हैं बहुत ही मधुर है, लेकिन जब भगवान भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो भगवान की वो लीलाएं और भी मधुर हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पर ऐसी कई लीलाएं करते हैं जो भगवान अपने धाम में नहीं करते, क्योंकि उसका स्कोप ही नहीं करने के लिए। बकासुर कहाँ पर है जिसका वध करेंगे नहीं, या ब्रह्म विभुवन लीला कहाँ पे होगी, वो सब इसी भौतिक जगत में जब भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान ये लीलाएं प्रदर्शित करते हैं और इन लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों को और जो अबोध लोग हैं जो भगवान से ईर्ष्या तो नहीं कर रहे लेकिन अज्ञानवश भगवान को जानते नहीं हैं इसलिए भगवान की पूजा करने लगे तो ऐसे लोगों को आकर्षित करते हैं भगवान ये लीलाएं करते हैं और इन लीलाओं के माध्यम से भगवान जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं उनकी ईर्ष्या को और बढ़ा देते हैं, है ना। जैसे जब भगवान असुरों का वध कर रहे थे तो सारे ब्रजवासी बहुत खुश हो रहे थे, चिंतित भी हो रहे थे कितने सारे विद्याएँ आ क्यों नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से क्या गलती हो गई। और माता यशोदा बार बार भगवान कृष्ण का अभिषेक कर रही थी, उनको नहला रही थी गोमूत्र से और गोबर से कि जो जितने भी अशुभ प्रभाव है वो दूर हो जाए, अपशगुन दूर हो जाए और भगवान सुरक्षित हो जाए, मंत्र पढ़ने के। और लेकिन जब ग्वाल बना के बताते थे आज कृष्ण ने ऐसा किया, आज कृष्ण ने ऐसा किया, सारे खुश होते थे और सारे गोपियाँ ब्रजवासी मिलकर उन लीलाओं के ऊपर गीत बना लेते थे और अपना काम करते हुए उन गीतों को गाते थे। लेकिन दूसरी कम उसको भी पता चलता था कि आज ये माना गया वो माना गया, उससे उसका भय और ईर्ष्या और ज़्यादा बढ़ गई। तो भगवान अपने लीलाओं के माध्यम से अपने भक्तों को आकर्षित भी करते हैं और जो अभक्त हैं उनको दूर भी भेजते हैं। सो यहाँ पर वैसे तो रूपा गोस्वामी ने उत्तम भक्ति की परिभाषा दी है, अनाभिलाषताशुभम ज्ञान कर्माणि अनावृतम अनुकूलम् कृष्णानुशीलनम् भक्ति तमाम, कि किसी भी और कोई भी और अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, कोई भी और डिजायर नहीं होनी चाहिए मुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत कि कोई भी इतर इच्छा नहीं होनी चाहिए, कृष्ण इतर इच्छा कोई नहीं होनी चाहिए। हर एक्टिविटी हर कार्य हर विचार भगवान की सेवा के निमित्त होना चाहिए, अन्य अभिलाषा शून्य और कोई विचार से बिल्कुल शून्य होना चाहिए, ज्ञान करवा देना। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया। तो आप बोलोगे कि भगवद गीता और भागवत भी तो ज्ञान है, तो क्या वो पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। सो एक्चुअली प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि जो कृष्ण संबंधी ज्ञान है वो भक्ति का हिस्सा है, लेकिन सांख्य योग है कि क्या दिव्य है, क्या अलौकिक है, क्या अलौकिक नहीं है, क्या भौतिक है, क्या भौतिक नहीं है, नेति नेति नेति, ये ज्ञान अर्जित करने का कुछ लाभ नहीं है। टाइम वेस्ट श्रम उससे अच्छा है कि भगवान के दिव्य गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाए जो कि एक्चुअली में भक्ति योगी है और भक्ति में आगे बढ़ा जाए, भगवान ने अपनी श्रद्धा को और प्रदान किया जाए, ज्ञान करना दिया ना एकदम। और ऐसे कर्मों के प्रति भी आसक्ति होना चाहिए जिससे स्वर्ग लोग महर लोग जन लोग ब्रह्म लोग इत्यादि लोगों के पीछे भागते रहें कि चलो वहाँ चलते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवद्गीता में कह रहे हैं आप ब्रह्म गुणों का पुनरावृत्ति सुना कि आप ब्रह्म लोग भी चले जाओ आपको फिर भी वापस आना पड़ेगा, है ना। और स्वर्ग लोग का तो और भी बुरा हाल है, स्वर्ग लोक विषाणु क्षण बुद्धे मृत्यु लोक का विषाणु कि ब्रह्म लोक में जाओ इंद्र लोक में चले जाओ कहीं भी चले जाओ स्वर्ग लोक में चले जाओ आपको जैसे जैसे आप सुविधाओं का उपयोग करोगे, हर सुविधा की एक टिकट है, हर सुविधा आपने उपयोग किया आपका एक पुण्य खत्म हो गया, जैसे पुण्यों का भंडार आपका क्षीण हो जाएगा कम हो जाएगा पुण्य क्षणे पुण्य मृत्यु लोकम इच्छन्ति। सो रूपा गोस्वामी ने कहा कि ये जो भौतिक ज्ञान है उसको भी ज़्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, और भगवान का जो निर्विशेष रूप है उससे भी आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही सकाम कर करके कुछ लोगों में जाने की अभिलाषा होनी चाहिए। ज्ञान करवानी तब और अनुकूल है, और कृष्ण की सेवा करनी चाहिए अनुकूल भाव से, प्रतिकूल भाव से कृष्ण की सेवा नहीं करनी चाहिए, अनुकूल है। कृष्णानुशीलनम, कृष्णानुशीलन मतलब भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए अनुकूल है। कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम, ये उत्तम ये प्रभुपाद यहाँ पर बता रहे हैं इस श्लोक का तात्पर्य में कि भक्ति एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा विशाल है, बहुत ही विस्तृत है। भक्ति में जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं वो भी इन्वॉल्व है, और जो भगवान की सेवा डायरेक्टली नहीं कर रहे वो भी इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास अगर कोई व्यक्ति जाता था और किसी वैष्णव से निंदा करना था, बोला देखो ठीक काम नहीं कर रहा, माया है, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी कहते थे वो भी कृष्ण सेवा कर रहे हैं, आप भी कृष्ण सेवा कर रहे हो, वो भी कृष्ण सेवा कर रहे हैं। कैसे? उन्होंने बोला कि जो भगवान का भक्त है, जो माया के अधीन है, वो माया की सेवा कर रहे हैं, माया कृष्ण की दासी है, तो इनडायरेक्टली वो भी कृष्ण की सेवा ही कर रहे हैं। सो जो भक्ति का जो दायरा है वो संकीर्ण नहीं है, वो विस्तृत है, विशाल है, लेकिन फिर भी अनुकूल भाव से सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन अगर प्रतिकूल भाव से भी सेवा की तो भी उसका फल मिलेगा, क्योंकि प्रभुपाद ध्यान कर रहे हैं, कृष्ण ये कह रहे हैं मनमनाम भक्त कि हमेशा मेरा ध्यान रखो, तो ये नहीं कह रहे कि इसका ध्यान रखना है। अगर हमने उस ध्यान की पराकाष्ठा पे पहुंच गए, अगर हम इस स्तर पे आ गए कि हम निरंतर भगवान का ध्यान कर पा रहे हैं चाहे कोई प्रतिकूल भाव से कर पा रहा है, तो भी उसका उसको फल मिलेगा, है ना, उसका फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण परम है, कृष्ण में द्वंद्व नहीं है, कृष्ण में द्वैत नहीं है, कृष्ण अच्छे और बुरे में फर्क नहीं करते, कृष्ण ये देखते हैं कि ओके फाइन मेरी सेवा में लगा है कि नहीं लगा। अगर कोई कृष्ण की कृष्ण के बारे में सोच रहा है, ध्यान कर रहा है, कृष्ण के बारे में बात कर रहा है, चाहे वो अनुकूल भाव से कर रहा है चाहे प्रतिकूल भाव से कर रहा है, कृष्ण उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर, वंदे विद्याभूषण इत्यादि हमारे आचार्यों ने अनेक बार अनेक असुरों की या जो कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं उनकी, उन्होंने कृष्ण को जो वचन बोले उनका उन्होंने विश्लेषण करके ये बताया कि ऐसा लग रहा है कि वो कृष्ण की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो कृष्ण को कृष्ण की प्रशंसा ही कर रहे हैं, है ना। शिशुपाल, दंत वक्र, ये सब भगवान कृष्ण की निंदा तो कर रहे थे, लेकिन अगर हमारे आचार्यों ने संस्कृत के विश्लेषण के द्वारा ये बताया कि एक्चुअली में जो आलोचना लिखी है वास्तव में उनकी प्रशंसा है। और इसीलिए क्योंकि शिशुपाल हमेशा भगवान का गुणगान करता था, इसीलिए उसको भगवान ने सायुज मुक्ति प्रदान की, है ना। कंस भय के कारण हमेशा भगवान कृष्ण का स्मरण किया जाता है ना, हमेशा स्मरण करता था भगवान का। तो प्रभुपाद वहां पे एक्चुअली बता रहे हैं कि पांच मुख्य रस है जिससे भगवान के साथ आदान प्रदान किया जा सकता है, शांत दास सांख्य वात्सल्य और माधुर्य, और साथ में सात जो है वो गौण रस भी है जिसमें गौण भाव है जिसमें भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। और वो जो गौण रस है चाहे वो इनडायरेक्ट ल रखते हैं, है ना, जिसमें जैसे वीर है, करुणा है, क्रोध है, आपका भय है, विभत्स है, ये जो है ये गौण रस है। लेकिन इन गौण रसों के अंदर भी भगवान से आदान प्रदान किया जा सकता है, भगवान की सेवा की जा सकती है। और एक्चुअली भक्ति रसामृत सिद्ध में श्री रूपा गोस्वामी एक्सप्लेन करते हैं कि कई बार जो पांच भावों में भक्त हैं, शांत दास्य, साख्य वात्सल्य माधुर्य, इन ये जो भक्त हैं इन पर भी कई बार ये जो सात रस हैं वो भी इन पर इम्पोज हो जाते हैं, आच्छादित कर देते हैं छह भावों, ये जो पांच मुख्य भाव हैं, और इतने तीव्र होते हैं कि कई बार जो मुख्य भाव है वो दिखाई नहीं देता। और रूपा गोस्वामी ने बहुत अच्छे से इसका विश्लेषण किया है भक्ति रसामृत सिद्ध में, जहाँ पर उन्होंने अनेक उदाहरणों से बताया कि किस तरह जटिला भगवान को क्रोध में कर रही है, हेट में भगवान से आदान प्रदान कर रही है, मुखरा है, और जो गोपियाँ हैं वो कैसे कभी श्रीमती राधा रानी को डांट रही है, कभी कृष्ण की आलोचना कर रही है, और जैसे रुक्मिणी देवी है वो भय भयभीत हो रही है कि कृष्ण छोड़ कर चले जाएंगे। जब कृष्ण ने रुक्मिणी देवी को बोला कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तुम लक्ष्मी हो, भाग्य की देवी हो, तो अच्छा होगा तुम किसी और के पास चले जाओ। तो रुक्मिणी जी डर के मारे बेहोश हो गई थी कि मुझे लग रहा है कि कृष्ण मुझे छोड़ के नहीं चले जाए, है ना। उस समय आप देखें कि जो पांच मुख्य रस है वो दृश्यमान नहीं हो रहे, दिख नहीं रहे, है ना, क्योंकि जो जो सात गौण रसों में से किसी एक रस ने उनको आच्छादित कर दिया। ये तीव्र रस है, है ना, क्रोध जो है बहुत ही तीव्र रस है, विपक्ष बहुत तीव्र रस है, और जब वो रस आता है तो और एक्सप्लेन करते हैं प्रभुपाद विभत्स रस को, कि जैसे यमुनाचार्य जी बोल रहे हैं कि जब मैं भगवान कृष्ण से जब से मैंने भक्ति शुरू की है तो अगर नारी संत का ध्यान आता है तो मेरा मुंह मुख जो है वो विकृत हो जाता है, है ना। तो ये प्रभुपाद बोल रहे हैं विभत्स रस के निशान है ना। सो प्रभुपाद ने अनेक जगह ये बताया कि देखो ये मान लिया कि प्रतिकूल भाव से भी सेवा किया तो भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन प्रतिकूल भाव से भगवान को प्राप्त करने में आमतौर पर सहयोग मुक्ति ही प्राप्त होती है ना। जब भगवान के शरीर की ज्योति में ब्रह्म ज्योति में लीन होता है, लेकिन अगर भगवान के साथ आदान प्रदान करना है, इसकी कुछ अपवाद भी है, है ना, इसके अपवाद भी हैं। अपवाद क्या है, जैसे उतना भगवान का वध कर ले, लेकिन भगवान ने फिर भी उनको अपनी माता का दर्जा दिया, है ना। जिस प्रकार कंस है, कंस क्योंकि हमेशा भगवान के रूप के बारे में सोच रहा था, भगवान से डर के मारे हमेशा भगवान कृष्ण पर ध्यान कर रहा था, तो उनको भगवान ने सारूप्य मुक्ति प्रदान की। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भगवान अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो कई बार भगवान भक्ति की महिमा दिखाने के लिए करते हैं, कई बार क्यों कर रहे हैं हमें समझ में नहीं आ सकता, हम कितने लॉजिक लगाएं और लॉजिक फिट नहीं बैठेगा। फॉर एग्जाम्पल हम नहीं जानते कि बलराम जी ने दुर्योधन को गधा विद्या क्यों सिखाई है, क्यों उन्होंने दुर्योधन को अपना शिष्य बनाया, हम नहीं जान सकते, कोई लॉजिक नहीं लगा सकते। भगवान ने किया, भगवान ने क्यों किया, सिर्फ भगवान ही जानते हैं और कोई नहीं जान सकता इस बात को। सो प्रभुपाद इस श्लोक के माध्यम से, इस तात्पर्य के माध्यम से ये भी स्थापित कर रहे हैं कि भक्ति जो है वो संकीर्ण नहीं है। और एक बार प्रभुपाद अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे, प्रभुपाद ने बोला कि इस संसार का हर एक व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है, चाहे साक्षात सीधे लगा हुआ है, चाहे इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से लगा हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति भगवान की सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान की सेवा नहीं करता, ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति को वो वांछित फल नहीं मिलेगा। भक्ति जिस संकल्प के साथ की जाती है उस संकल्प से उसको फल की प्राप्ति होती है। जिस भी संकल्प से, कार्य महत्वपूर्ण है लेकिन कार्य के पीछे उसका जो संकल्प है, किस संकल्प से, किस क्या सोचकर हमने कोई कार्य किया, उससे उसका फल निर्धारित होगा, है ना। जैसे इस्कॉन में बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, वो सब पुत्रदा एकादशी का पालन करते हैं, है ना, तो ऐसा नहीं सबके बच्चे हो जाते हैं, नहीं, अगर हम बोलेंगे पुत्रदा एकादशी का पालन किया तो बच्चा पैदा हो जाएगा, संतान मिलेगी, तो फिर तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनका जो संकल्प है ब्रह्मचारियों का या और भक्तों का, उनका संकल्प कुछ और है, उनका संकल्प है, उनका जो उद्देश्य है पुत्रदाय काशी का पालन करने के लिए, भगवान की प्रसन्नता है, अपने लिए कुछ नहीं मांगना है। लेकिन अगर कोई अपने लिए किसी इच्छा को करते हुए अगर भगवान की सेवा करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो उसको भगवान को वांछित फल उचित समझाने पर अवश्य प्रदान करेंगे। तो प्रभुपाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अगर प्रतिकूल भाव से भगवान की सेवा की तो ऐसे फल मिल रहे हैं, तो प्लीज सोच लो कि अगर अनुकूल भाव से भगवान की सेवा करेंगे तो भगवान क्या देंगे। प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम अंदाजा नहीं लगा सकते, अचिंत्य है, सोचा नहीं जा सकता कि भगवान कितनी किस हद तक कृपा करेंगे। और एक्चुअली में जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के सामने असमर्थ हो जाते हैं, और भगवान को कहना पड़ता है कि मैं आपकी भक्ति का ऋण नहीं उतार सकता, आपकी भक्ति ही आपकी भक्ति का भक्त है, है ना। जैसे श्री प्रभुपाद होता है कि चैंटिंग का फल क्या है, और ज़्यादा चैंटिंग कर सकते हैं, है ना, हम सब लोग चैंटिंग करेंगे तो झोली में से पैसे निकल आएंगे, ऐसा नहीं है। चैंटिंग करने का जो फल मिलेगा कि हम और ज़्यादा जन कर पाएंगे, इसी तरह से भक्ति का जो फल है, भक्ति का फल केवल और केवल भक्ति है। अगर भक्ति किसी और मंतव्य, किसी और उद्देश्य के साथ की जाती है तो एक्चुअली वो भक्ति नहीं रहती, वो सकाम कर्म बन जाता है। फिर भी भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है, धीरे धीरे जो भक्त है वो भक्ति में आगे बढ़ता है, लेकिन निष्काम भक्ति, निस्वार्थ भक्ति, अहैतुक की भक्ति वो सर्वश्रेष्ठ है। और जो भक्त अहैतुक की भक्ति का पालन करते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो अवश्य बहुत ही तेजी के साथ प्रगति करते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि वो सीढ़ियों से नहीं जाते, वो लिफ्ट में बैठ के सीधा टॉप फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। सो प्रभुपाद यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति के माध्यम से वैष्णव अपराध से भी निरस्त हुआ जा सकता है। ब्राह्मणों ने अपराध किया तो उसका भी निरस्तीकरण हो जाता है, वो अपराध भी खत्म हो जाता है, लेकिन बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कई बार भक्ति आच्छादित भी हो जाती है। इसीलिए भक्त को हमेशा सावधान रहना चाहिए कि वो वैष्णव के प्रति अपराध ना करें। वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अच्छे और श्रेष्ठ वैष्णव के संग में रहो। और कुछ भी हो रहा है, कभी भी किसी वैष्णव के बारे में बुरी बात नहीं, है ना। अगर आपको कोई चीज खराब लग रही है किसी कृष्ण की, तो आप ये सोच सकते हो कि मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्यों कोई काम हो रहा है ना। और चलो अगर आपको पता भी चल जाए कि कोई काम क्यों हो रहा है, कोई वैष्णव बाकी गलत काम कर रहा है, तो भी आपको उसके बारे में कोई गलत बात बोलने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता है ना। क्योंकि हो सकता है उस वैष्णव में वही एक कमी हो, हमारे में करोड़ों कमी है, तो अगर हम अपनी कमियों पर नजर डालेंगे तो वैसे ही शर्मिंदगी हो जाएगी हमें कि अगर मैंने एडवर्टाइज कर दिया उसकी एक कमी को और मेरी कमियों के बारे में अगर सबको पता चल जाए तो उसी में मुझे मंदिर से उठा के बाहर फेंक कर मुझे तो गुस्से में आ गए। तो हमारे पास अधिकार नहीं है किसी भी वैष्णव के बारे में कुछ भी गलत बात बोलने की, है ना। अगर हमारी सेवा में, अगर हमारी सेवा है, फॉर एग्जाम्पल टेम्पल प्रेसिडेंट है या जैसे गुरु ही है, तो उनकी सेवा है भक्तों का ध्यान रखने की, भक्तों को संभालने की, उनके आध्यात्मिक जीवन का ध्यान रखने की। माता पिता है उनकी सेवा है, उनका दायित्व है, कर्तव्य है कि वो उनकी संतान की रक्षा करें, कि गलत रास्ते पे नहीं चले। तो वो डांट सकते हैं, वो बोल सकते हैं। जो वैष्णव है वो टेम्पल प्रेसिडेंट गुरु के पुत्र संतान के समान, तो इस प्रकार संतान का ध्यान रखना, उनको डांटना और उनकी सुरक्षा करना एक पिता का कर्तव्य है। उसी प्रकार जो मंदिर अध्यक्ष है और गुरु है, उनका कर्तव्य होता है कि वो वैष्णव का ध्यान रखें और आवश्यकता पड़े तो उनको डांट दे सकते हैं, है ना। लेकिन प्रभुपाद ने यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभुपाद ने बोला कि ऑलवेज प्रेज इन पब्लिक बट चेस्टाइज इन प्राइवेट, है ना। कि आप जब किसी का ग्लोरीफाई करो, किसी का किसने अच्छा काम किया तो सब लोगों के सामने करो, लेकिन अगर किसी को डांटना है तो हमेशा अकेले में डांटो ताकि सबके सामने उसको शर्मिंदगी महसूस नहीं हो। और भगवान कृष्ण भगवत में कहते हैं कि अगर किसी वैष्णव को गलत काम करते हुए देख लिया फिर तो उसको वैष्णव मान लिया, तो उससे आप भक्ति में, वो भी भक्ति में आगे बढ़ेगा और आप भी भक्ति में आगे बढ़ेगा। सो प्लान सभी कृष्ण के हैं। जैसे यहाँ पर भी भगवान कृष्ण ने बोला कि मेरा प्लान था, मेरी योजना थी कि ऐसा होगा और ये जाएंगे और सब होगा, है ना। सो हमें ये बात भी सोचनी चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कुछ गलत घटित हो रहा है, विशेषकर भक्त को ये बात अवश्य माननी चाहिए कि अगर हमारे जीवन में कुछ भी खराब हो रहा है, हमारे पर कुछ विपत्ति आ रही है, तो वो एक्चुअली में कृष्ण का स्पेशल प्लान है हमारे, है ना। भगवान कृष्ण की योजना है हमारा शुद्धिकरण करने की। क्यों? क्योंकि अगर सोने को शुद्ध करना है तो बर्फ में लगा कर शुद्ध नहीं होगा, उसको आग में डालेंगे, जलाएंगे, तो ही उसकी जितनी भी अशुद्धियाँ वो अलग हो जाएंगी और शुद्ध सोना प्राप्त होगा। तो जब भगवान को लगता है कि कोई भक्त आगे बढ़ने के योग्य है, अच्छे से सेवा कर रहा है, तो उसको और ऊपर उठाने के लिए भगवान उस पर बत्तियाँ डालते हैं, है ना। और अगर वो भक्त उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुआ तो भगवान उसको फिर थोड़ा रेस्ट दे देते हैं कि चलो ठीक है, तुम दो चार पाँच दस बीस साल अभी और अच्छे से प्रैक्टिस करो, दो चार जन्म अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर दोबारा से देखेंगे। तो भक्त के जीवन में अगर विपत्ति आए, हमारे जीवन में अगर विपत्ति आती है, तो हमें उसको खुश होना चाहिए देखकर विपत्ति को कि हाँ कुछ विपत्ति नहीं है, इसका मतलब भगवान हमें नोटिस कर रहे हैं, भगवान हमें विपत्ति में आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा आसक्त हूँ अपने घर परिवार में, भगवान इस परिस्थिति के माध्यम से मेरा वैराग्य बढ़ाना चाहते हैं, मेरी आसक्ति घटाना चाहते हैं और मेरी आसक्ति भगवान अपने प्रति बढ़ाना चाहते हैं। तो भक्त अगर इस विचारधारा से, इस चेतना में अगर भक्त विपत्ति के समय आगे बढ़ेगा, तो वो विपत्ति जो अपना काम करेगी वो करेगी, लेकिन भक्त जो है उससे कभी भी प्रभावित नहीं होता है। भक्त जो है हमेशा यही सोचता रहता है कि भगवान ने मुझे, भगवान ने परीक्षा ले रहे हैं और भगवान मेरे माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो भक्त भगवान की सेवा करना कभी भी नहीं छोड़ता है ना। इसलिए हमें कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे भक्तों को कंप्लेंट करते हैं हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हमारे निजी जीवन में ऐसा हो रहा है, वो हो रहा है, वो सब भगवान का प्लान है ना। हमें कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। अगर कंप्लेंट करें तो भगवान फिर उस परिस्थिति को बदल देंगे, लेकिन फिर भगवान दोबारा मौका देने के लिए वेट करेंगे भगवान। तो कोई भी अच्छी या बुरी परिस्थितियों सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कैसी भी परिस्थिति में किस प्रकार भगवान की अधिक से अधिक सेवा की जा सकती है।